प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मिश्र जी, मेरे साथी श्री यादव जी, भाइयों और बहनों, मुझे याद है मैं पटना में कुछ 6-8 महीने के पहले हाजिर हुआ था, जिसका जिक्र किया अभी अभी। वो उस वक्त उसी दिन ये कच्छ का समझौता हुआ था और फिर जब मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं, तब ताशकंद का एक समझौता हुआ है। लेकिन इन दोनों के बीच एक नया इतिहास हिंदुस्तान में बना हुआ है। कच्छ के बाद कश्मीर में क्या होना शुरू हुआ, कैसी कैसी बातें वहां बनती गई और हिंदुस्तान को कौन से कदम उठाने पड़े, ये तो अब जाहिर बातें हैं, मैं फिर उन्हें दोहराना नहीं चाहता। आवश्यक नहीं, क्योंकि आप इस देश का बच्चा बच्चा जानता है इन चीजों को, इन घटना जो घटनाएं न खाली इतिहास के पन्ने पर रहेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के बच्चे के और बूढ़े के जो जो जिंदा है हिंदुस्तान में, उसके दिल और दिमाग पर वो हमेशा के लिए ठहरने वाली, कायम रहने वाली बातें बनी। उसके बाद एक बात बनी जो सिक्योरिटी काउंसिल ने कही और जो माने हमने मानी है, पाकिस्तान ने मान ली, वो थी युद्ध विराम की। और युद्ध विराम के बाद एक तांत्रिक नजर से तो युद्ध विराम हुआ ही था, लेकिन जगह जगह वही बातें चलती थी, गोलामारी चलती थी, दोनों तरफ से भी चलती थी, जख्मी लोग सैनिक होते थे, मारे जाते थे। तो सही माने में तो युद्ध विराम नहीं बना था, युद्ध की हवा तो जारी थी। आपको पता होगा कि जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का संघर्ष जारी था, उसी वक्त रशिया के चेयरमैन ऑफ काउंसिल, वो जिनको वो प्राइम मिनिस्टर कहते, पासिजुन साहब का उसी वक्त एक जाहिर निमंत्रण था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ समझौता होना आवश्यक हो तो हम मदद करने के लिए तैयार है, वो ताशकंद में हम बनाने के लिए तैयार है। ये पहली बार उसी वक्त उन्होंने कही थी। लेकिन युद्ध विराम के बाद वो आमंत्रण से दोहराया गया, पाकिस्तान ने माना, हिंदुस्तान ने माना। और इस महीने के पहले हफ्ते में हमारे राष्ट्र के नेता, राष्ट्र कहना है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ताशकंद के यात्रा पर चले गए। जिस वक्त वो चले गए, उस वक्त ये कुछ सपना ही नहीं था कि जैसे वो चले गए हैं वैसे वो वापिस ना आएंगे, न लौटेंगे। 8-10 दिन वहां जो बातें हुई, जो मसले वहां आए सामने, जिनकी वहां चर्चा हुई, बहस हुआ, और उन सब चर्चाओं के बाद एक समझौता जिसे आज दुनिया जानती है ताशकंद डिक्लेरेशन के नाम, ताशकंद की घोषणा के नाम से, वो दोनों देशों की तरफ से माना गया। और उसी रात को हमारे राष्ट्र के नेता चल बस, हमेशा के लिए चल बस। तो ये 6-8 महीने का इतिहास वीरता से भरा हुआ है, अभिमान की कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन दर्द भरी कहानियों से भी भरा हुआ है। मेरी भावना, मैं मानता हूं देश के हर एक व्यक्ति की भावना सम्मिश्र भावना से, ये साल में हमारे देश के सेना ने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, हमारे देश के सेनापतियों ने, जब उनसे अपेक्षा थी कि हिंदुस्तान के तिरंगे की शान वो बचाए कायम रखे, वो काम हमारे देश के कितने ही नौजवानों ने, अफसरों ने अपनी जान की बाजी लगा के कुर्बानी की और हमारा देश का नया इतिहास बनाया। और जब मौका आया, तब जब आमन की आवाज उठी, तो आमन की आवाज की आवाज में अपना आवाज बुलाने के लिए कमजोरी नहीं दिखाई हमारे देश के नेताओं ने, वही माना। क्या पृष्ठभूमि थी इस सवाल की, वो समझना आवश्यक है। कोई देश हमेशा के लिए युद्ध की नीति मान नहीं सकता इस देश में, इस दुनिया में आजकल की। हिंदुस्तान की नीति पहले से यही थी, जब हम आजाद बने तब दुनिया के सामने हमने यही तस्वीर रखी थी कि जो नए आजाद बनने वाले देश हैं उनकी समस्याएं कौन सी। याद होगा आपसे कि आजाद बनने के बाद पंडित जवाहरलाल जी ने दुनिया के सामने यह रखा कि जो पहले पहले आजाद बने थे, जो आगेवान देश बने थे, उनकी समस्याएं अलग थी, उनको वक्त मिला था, वो अपनी तरक्की कर चुके थे औद्योगिक क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, उनकी इतनी तरक्की हुई थी कि जिसकी कल्पना हमें आज भी नहीं आती। जो नए आजाद बनने वाले देश थे वो आजाद किस लिए बनना चाहते थे, वो आजाद इसलिए नहीं बनना चाहते थे कि एक हुकूमत जाए चले जाए और उसकी जगह एक दूसरी हुकूमत आए। पहले के कुछ हुकूमत चलाने वाले दूसरे लोग थे, अब हमारे लोग वहीं जगह बैठे, इतना ही फर्क करने के लिए हम आजाद नहीं बने थे। हम आजाद इसलिए बनना चाहते थे और आजाद इसलिए बने हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली करोड़ों जनता है उनकी गरीबी हमें हटानी थी। दबे हुए लोग हैं, किसान दबे हुए थे, मजदूर दबे हुए थे, इनको एक नई रोशनी उनके जीवन में आई और वो कुछ न कुछ नया काम, नई जिंदगी उठाने की कोशिश करें, इस काम के लिए हम आजाद बने। और वो आजादी इस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना हो, उपयोग में लाना हो, तो दुनिया में आमन रहनी चाहिए, इस देश में आमन रहनी चाहिए। इसलिए हमने जाहिर किया था कि हम सब देशों से दोस्ती रखना चाहते हैं। और सही माने जो यूनाइटेड नेशंस की जो एक संगठना बनी, यूनो बनी, उसका तो मैं मानता हूं कि उसकी पैदाइश तो इस काम के लिए हुई, वो तो इस काम के लिए ही निकली। उन्होंने पहला देखा था दुनिया में कि दो लड़ाई बनी, अब उन लड़ाइयों ने क्या क्या असर किया था देशों में, ये तो जाहिर था। और तीसरी भी एक बात ये समझना चाहिए, ये सब जो पृष्ठभूमि है आजकल की दुनिया के राजनीतिक प्रश्नों की, वो पृष्ठभूमि हमें समझना आवश्यक है। आपको पता है कि पहली लड़ाई कब कैसे खत्म हुई? पहले तो ये रणगाड़े थे, टैंक थे, बंदूकें थी, इससे लड़ाई होती थी, लेकिन जब लड़ाई आखिर होने का वक्त आ गया तो एक नया शस्त्र पैदा हुआ ये लड़ाई के काम में, और वो था ये हवाई जहाज। हवाई जहाज लड़ाई के काम में आना शुरू हो गया और पहली लड़ाई खत्म हो। दूसरी लड़ाई जो दूसरा जागतिक युद्ध था वो शुरू ही हुआ हवाई जहाज के इस्तेमाल से काम, और सालों तक चार पांच साल ये हवाई जहाजों की بم ماری چلتی رہی جرمنی میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، رشیا میں، تسو تسو زمین وہ لڑتے رہے. اور اس لڑائی کا انت کب ہوا؟ جب اس لڑائی میں ایٹم بام کا جنم ہوا تو دوسری لڑائی ختم ہوئی. ایک ہی اور دو ایٹم بام پھینکے گئے اور دوسری لڑائی بند ہو گئی. اب تیسرا جاگرک یدھ کبھی ہونے والا ہو، ایشور کرے اور نہ شروع. لیکن جب شروع ہوگا تو جس کام سے لڑائی بند ہوئی وہاں سے وہ لڑائی شروع ہوگا، ایٹم بام سے لڑائی شروع ہوگی. اب شروع ہوگی تو یہ تیسری لڑائی کیسی بند ہوگی؟ میں مانتا ہوں کہ تیسری لڑائی جب بند ہوگی تب دنیا میں مانو نہیں رہے گا نہ دنیا میں رہے گی، یہ ہوا ہونے والی. تو یہ پرشتبھومی تھی جو راجنیتک پرشنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے من میں یہ خیال تھا کہ ایسی ایک دنیا بن گئی تو ایسے دنیا کو بچانے کے لیے کچھ یونو انہوں نے بنائی. اور جب ہندوستان آزاد بننے کے بعد اس یونو کا انہوں نے سدستو سویکارا تو یہ مان لیا کہ ہاں یہ آوشک ہے ہمیں، تو ہمیں ہندوستان نیا بنانا ہے.